एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, लहरों ने मेरे चारों डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा। का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले धागे। देखा तो मैंने ये पाया, मौत का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले धागे। यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको बाहों में थाम, यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको बाहों में थाम। नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सजदे का से। ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। पिता हमारे मन हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे हम सबों को, तो आशीष दे विशेषकर मेरे श्रोताओं को, तेरे वचनों से बहुतायत से आशीषित कर पिता, और मेरे संग हो, मुझे तेरे वचन को तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अच्छी तरह से बतलाने के लिए मदद कर। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। स्वर्ग में आपका घर, यह आज का हमारा अध्ययन रहेगा। पूर्वी गोलार्ध में कई सालों तक रहने के बाद जब मार्को पोलो अपने गृह नगर वेनिस लौटकर आए तो उनके दोस्तों को लगा कि उनकी लंबी यात्रा की वजह से वे पागल हो गए हैं। उनके पास कहने के लिए इस तरह की असाधारण कहानियां थीं। मार्को ने एक शहर की यात्रा की थी जो पूरी तरह सोने और चांदी से भरा था। उसने काले पत्थरों को देखा जो जले हुए थे, लेकिन किसी ने कभी कोयले के बारे में नहीं सुना था। उसने देखा एक कपड़ा आग में फेंके होने पर भी इसमें आग नहीं पकड़ रहा था, लेकिन किसी ने कभी एस्बेस्टस अदह के बारे में नहीं सुना था। उसने बताया एक विशालकाय भुजंग को जो 10 पग लंबा और इतना बड़ा जबड़ा कि आदमी को निगल जाए, आदमी के सिर के आकार का बादाम और अंदर का भाग दूध के जैसा उजला, और एक पदार्थ जो जमीन से निकल रहा था जिसको वास्तव में चिराग के रूप में दीप्तमान किया जा सकता था, लेकिन किसी ने कभी मगरमच्छ, नारियल या कच्चे तेल को देखा नहीं था। वे ऐसी कहानियों पर सिर्फ हंसते रहे। वर्षों बाद जब मार्को अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके पास एक भक्त आदमी आया और तीव्र इच्छा जताई कि उन्होंने जो अविश्वसनीय किस्सा सुनाया था उसको वापस ले लें, लेकिन मार्को ने इनकार कर दिया। यह एक एक बात पूरी सही है, वास्तव में मैंने जो देखा है उसे आधा अधूरा नहीं बताया है। बाइबल के लेखक जो हमें स्वर्ग के बारे में बताते हैं, दरअसल वह मार्को पोलो की भावना की गूंज सी लगती है। उन्होंने एक जगह पर जो अलौकिक सौंदर्य देखा वह इतना उत्कृष्ट था, इतनी शानदार लग रही थी कि वे देखे गए दृश्य में से मात्र कुछ अंश का ही वर्णन कर सकते थे, और हम इस पर उसी आपत्ति का सामना करते हैं जो मार्को पोलो के दोस्तों के द्वारा की गई थी। हमें मगरमच्छ और नारियल की कल्पना अवश्य करनी चाहिए यह मानकर कि जिसे हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हमें बाइबल से जो आभास मिलती है वह दर्शाता है कि स्वर्ग बादलों के बीच और बिना की धुन पर आनंद लेने से भी कहीं ज़्यादा है। क्या स्वर्ग एक वास्तविक जगह है? यीशु अभी हमारे लिए एक अचल स्वर्ग में एक बहुत ही वास्तविक जगह का निर्माण कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:1-3, अपने मन को व्यग्र ना करें, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, मुझ पर भी यकीन रखें। मेरे पिता के घर में कई महल हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने आपको बताया होता। मैं आप सभी के लिए एक स्थान का निर्माण करने जा रहा हूँ, और जब मैं जाऊँगा तो आपके लिए स्थान का निर्माण करने के बाद पुनः आऊँगा और आप सभी को अपने पास ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आप भी रह सकें। यह यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है जो यूहन्ना 14:1-3 में लिखा है। यीशु हमारी दुनिया में पुनः आ रहे हैं और हम सबको स्वर्गीय नगर में विशेष रूप से निर्मित भवन में ले जाएंगे, जो हमारे आनंददायक स्वप्न से भी यशस्वी है, नया यरूशलेम। वहाँ 1000 साल रहने के बाद यीशु मसीह का इरादा इस स्वर्गीय नगर को नीचे पृथ्वी ग्रह में ले आने का है। जैसे ही नए यरूशलेम नीचे उतरेगा, अग्नि पूरी दुनिया को शुद्ध कर देगी। हमारा निविकृत ग्रह तब उधार व्यक्तियों का स्थायी ग्रह बन जाएगा। यह हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:7-15। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसकी अगली तस्वीर क्या बतलाता है? प्रकाशित वाक्य 21:1-3 हम पढ़ते हैं। तब मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। पहले का स्वर्ग और पहली पृथ्वी नष्ट हो गई थी और अब कोई समुद्र भी नहीं बचा था। मैंने पवित्र शहर नया यरूशलेम देखा, जो परमेश्वर के स्वर्ग से नीचे आ रहा था, बिल्कुल एक दुल्हन जो उसके पति के लिए खूबसूरती से तैयार हुई हो उसी की तरह। और मुझे सिंहासन से एक तेज ध्वनि सुनाई दी, अब परमेश्वर का निवास मनुष्यों के साथ होगा और वे उनके साथ ही रहेंगे। वे सारे उनके अपनी प्रजा होंगे और परमेश्वर उनके साथ निवास करेंगे और उनके नियंता बनेंगे। अग्नि के द्वारा इसके रूपांतरण के बाद यीशु ने वादा किया कि वह नई धरती पर अधिकार कायम करेंगे। आज्ञाकारी व्यक्ति या नम्र व्यक्ति आशीषित होते हैं, जिसके कारण वे ही पृथ्वी का वारिस होंगे। यह प्रतिज्ञा हम मत्ती 5:5 में पढ़ते हैं। यीशु मसीह एक बार अपनी पूर्ण दुनिया को इसके मूल अदन के बाग के सौंदर्य में फिर से बहाल करने का वादा किया है, और आज्ञाकारी लोग ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यह हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। क्या हम स्वर्ग में सदैव रहेंगे? जब यीशु अपने पुनर्स्थान और गौरवशाली शरीर में अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की थी, क्या आप जानते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं लूका 24:39। यहाँ लिखा है, मेरे हाथों और मेरे पैरों को ध्यान से देखो, यह मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श करें और देखें, एक भूत में मांस और हड्डियाँ नहीं होती है, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं मेरे हैं। यीशु का वास्तविक शरीर था। उन्होंने थोमा को उन्हें छूने के लिए कहा था, यूहन्ना 20:27। इस अवसर पर यीशु एक असली घर में रहे, जीवित लोगों से बात की और वास्तव में खाना खाया, लूका 24:43। स्वर्ग शैतानों के बसने के योग नहीं है, जबकि वास्तविक लोगों जो आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेते हैं और जिनके पास गौरवशाली शरीर होता है, उनके लिए है। हम पढ़ते हैं फिलिपी 3:20-21 में, लेकिन हम स्वर्ग में निवास करते हैं और वहाँ से उत्सुकता पूर्वक हम एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, जो एक शक्ति के द्वारा जो उन्हें उनके अधीन सब कुछ रखने के लिए सक्षम बनाता है, हमारे इस अधम शरीर को उनके जैसे गौरवशाली शरीर में परिवर्तित कर देंगे। हम निश्चित आश्वासन हो सकते हैं कि हमारे दिव्य शरीर मसीह के पुनर्स्थित शरीर के सदृश ठोस और वास्तविक होंगे। क्या हम स्वर्ग में अपने परिवार और दोस्तों को पहचान पाएंगे? बाइबल बताती है, अभी हम एक दर्पण में जैसा धुंधला प्रतिबिंब देखते हैं, तब हम आमने सामने जैसा देख पाएंगे। अभी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तब हम पूरी तरह से जान पाएंगे, यहाँ तक कि सर्व विदित। पहला क्रंथियों 13:12 में स्वर्ग में हमें एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। हम लोग एक दूसरे को गहराई से समझ पाएंगे और उनके गुणों के बारे में जान पाएंगे, जितना कि यहाँ के वर्तमान दुनिया में नहीं। यीशु के शिष्यों ने उन्हें अपने स्वर्गीय शरीर में भी पहचान लिया, स्पष्टतः उनकी परिचित विशेषताओं के कारण। लूका 24:36-43। मरियम उनकी परिचित आवाज, जब वे उसके नाम से बुलाए थे, कि वजह से कब्र को जान गई थी। यूहन्ना 20:14-16। इमाउस में दो शिष्यों ने उनके कुछ परिचित हाव भाव के कारण पहचान लिया था, जब वे अतिथि का भोजन के लिए आशीर्वाद देने के तरीका पर गौर किया, तो वे उनके आचरण से परमेश्वर के रूप में पहचान लिया। लूका 24:13-35। छोड़कर चले जाने के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग में आमने सामने पुनर्मिलन से रोमांचकारी क्षण का अनुभव करेंगे। कल्पना कीजिए उस खुशी का, जब आप अपने जीवन साथी को उसके विशिष्ट मुस्कान से या आपके बच्चों का ओ जाना पहचाना पुकार, जिसे बहुत समय पहले ही सुना था, या कुछ प्रीतिकर दोस्त के प्यारे संदेश से उसे पहचानेंगे। हमें अनंत काल के लिए जीवन के सबसे मूल्यवान बंधनों को और गहरा और ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित करना पड़ेगा। स्वर्ग में हमारा क्या काम होगा? स्वर्ग में हमारे पास बहुत सारे कार्यकलाप जो हमारे लिए चुनौती होगी। आप अपने पसंद के घर को कैसे संवारेंगे? यशायाह 65:17-22 में हम पाते हैं, देखना मैं नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाऊंगा, मैं यरूशलेम पर आनंद करूंगा और अपने लोगों के बीच प्रसन्नता से रहूंगा। वे घर बनाएंगे और उनमें रहेंगे, वे अंगूर का बाग लगाएंगे और उसका फल खाएंगे। मेरे अपेक्षित लोग अपने हाथों से किए कामों का खूब आनंद लेंगे, यशायाह 65:17-22 में पाते हैं। यीशु पहले से ही पवित्र शहर नए यरूशलेम में हमारे लिए व्यक्तिगत महल बना रहे हैं। यूहन्ना 14:1-3 के मुताबिक प्रकाशित वाक्य 21 में भी हम पाते हैं। इन आयतों से स्पष्ट होता है कि हम अन्य महलों की योजना और निर्माण भी करेंगे, शायद सुंदर देश की रियासत, उन्हें स्वर्ग की समृद्ध विविधता के साथ भूदृश्य निर्माण करेंगे। और कौन जानता है कि परमेश्वर की उन्नत सभ्यता में कौन सा उच्च तकनीकी अद्भुत कार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब हम परमेश्वर के निवास स्थान के अन्वेषण का काम प्रारंभ करते हैं, हमारी वर्तमान वैज्ञानिक महत्वपूर्ण खोज और अंतरिक्ष ओडिसी हमें अपने पिता के घर पर बच्चे के खेल की तरह लगती हैं। क्या आप गर्जनदार जलप्रपात से शांत तृणभूमि, वर्षा वनों के कुल बुलाने और कोमल कली के खिलने की सुंदरता से प्यार करते हैं? प्रभु सियोन को निश्चित रूप से सहूलियत देंगे, वे इसके रेगिस्तान को भी आनंद वाटिका की तरह बनाएंगे। इसकी बंजर जमीन भी प्रभु के बगीचे की तरह होगा, इसमें संतुष्टि और खुशी, कृतज्ञता और गायन की आवाज पाई जाएगी, यशायाह 51:3। परमेश्वर पृथ्वी को प्रारंभिक आनंद वाटिका में परिवर्तित कर देंगे, ना तेल का फैल जाना या काला धुआं या अनावृष्टि, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। झील बिल्कुल कच्चे हीरे की तरह साफ, पेड़ राजसी और ऊंचा ऊंचा शांत पहाड़ होगा, ना केवल दुनिया की सुंदरता बल्कि उन्हें अवशोषित करने की हमारी क्षमता भी बहुत तीव्र होगी। यह ठीक ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे बहुत लंबी बीमारी के बाद घर से बाहर निकलने का पहला दिन हो, और पहले वास्तविकता के 20 मिनट जो एक जादुई अनंत काल में विस्तारित होगा। क्या आप नई चीजों का अनुभव करने का आनंद लेते हैं, सीखने का, बनाने का? वहाँ अमर मस्तिष्क ध्यान से देखेगा, कभी भी बिना सृजनात्मक क्षमता के करामती आनंद का त्याग किए। प्यार को छुड़ाने के रहस्यों को हर एक संकाय का विकास किया जाएगा, हर क्षमता में वृद्धि होगी। ज्ञान का उपार्जन दिमाग को उबाऊ नहीं देने वाला होगा या ताकत को बुरी तरह थकाएगा नहीं। वहां विशाल उद्यमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्कृष्ट आकांक्षाएं का आगमन हुआ, उच्चतम अभिलाषाओं का एहसास हुआ और अभी भी विजय पाने के लिए नई ऊंचाइयों दृष्टिगोचर हो रही है। प्रशंसा के लिए नए चमत्कार, समझने के लिए नई सच्चाई, ताजा वस्तुएं मन और आत्मा और शरीर की शक्तियों को बढ़ाएगी। ब्राह्मण के सभी खजाने ईश्वर के उद्धार के उपायों के अध्ययन के लिए खुले होंगे। क्या शैतान किसी भी समय स्वर्ग को फिर से जोखिम में डालेगा? प्रकाशित वाक्य 21:27 कहती है, कुछ भी अशुद्धता इसमें कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना ही कोई ऐसा जो निंदनीय कार्य करने वाला है या कपटी है, बल्कि इसमें केवल वे लोग ही जा पाएंगे जिसका नाम मेमना के जिंदगी के किताब में लिखे गए हैं। परमेश्वर पाप और उसके भयंकर परिणामों को पूरी तरह से निकालने जा रहे हैं, वे फिर कभी नहीं दिखाई देगा। जब यीशु का अवतार होगा हम उसके जैसा ही होंगे। 1 यूहन्ना 3:2 कहता है, मारने, चोरी करने, झूठ बोलने या बलात्कार करने के लिए उत्पन्न आवेगों का दमन करने की जगह हम स्वर्गीय प्रतिष्ठा का अनुसरण करेंगे। उनकी आंखों के आंसू का हर कतरा मिटा देंगे। अब मृत्यु या मातम या रोना या दर्द पुरानी चीजें होते ही उसके नष्ट होने से जो घटित होता था इस सारे का अंत हो जाएगा। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 21:4 में यहाँ तक कि परम दुश्मन मृत्यु समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग की भूमि में सभी अपरिवर्तनशील युवा ही रहते अमर 1 कुरिन्थियों 15:53 के अनुसार है। किसी भी निवासी को कभी भी बुढ़ापे के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वर्ग सिर्फ पाप के परिणामों को ही नष्ट नहीं करता है, बल्कि यह उनके विपरीत भी कर देता है। जरा सोचिए, यह उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो आजीवन विकलांगता से जूझे हैं। तब अंधों भी देखने लगेंगे और बहरे के कान भी खुल जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की भांति उछलेगा और मुख जीव खुशी से चिल्लाएगी। यशाया 35:5-6। स्वर्ग का सबसे बड़ा रोमांच क्या होगा? कल्पना कीजिए कि ब्राह्मण के प्रभु को आमने सामने देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहती है, अब परमेश्वर का निवास मनुष्यों के साथ है और वे उनके साथ ही रहेंगे। वे लोग उसके नागरिक होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ ही रहेंगे और उनके प्रभु होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथी और शिक्षक होने का वादा करते हैं। उसके चरणों में बैठकर कितनी खुशी होगी और हमें वहां अवश्य होना चाहिए। यीशु हमारे साथ आमने सामने मिलने के लिए उत्सुक हैं। यही कारण है कि वह इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी आपको पाप से बचाने के लिए तैयार थे। आपको व्यक्तिगत रूप से इस उपहार का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। आपको परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। आपको क्षमा की आवश्यकता जो सूली से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि कुछ भी अशुद्धता इसमें कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, ना ही कोई ऐसा जो निंदनीय कार्य करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह बुलाता है कि हम उसके पास आए, अपने पापों से क्षमा मांगे कि हम पाप मुक्त हो जाए। यीशु हमें अपने स्वर्गीय घर में ले जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर पाप नहीं रह सकती है। इसीलिए हमारे जीवन से पाप को अलग होना है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को उसे दे दें कि यीशु मसीह हमारे जीवन से पाप मुक्त करे और हम उसके साथ उसके समान रह सके और उसके साथ सदा के लिए रह सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें तू ग्रहण कर, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आशीष के लिए, तेरे प्रतिज्ञा के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में नया घर बना रहा है, उसमें हम होना चाहते हैं पिता। उसके लिए हमें तैयार कर, पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।
तेरे विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे, विश्वास है तू न फेरे, दयालु यीशु मेरे। पुकार मेरे ईश्वर, एक तू मुझको आंखों में ममता लेकर, तुझ तक पहुंच पुकार मेरे ईश्वर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventhist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।